सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें बाबा की अवतरण भूमि में भट्टी करने का इतना सुनहरा चांस मिला है। तो कल हमारी भट्टी का शुभारंभ हुआ तो उसमें हमें ये बताया गया कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारी इस भट्टी का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, और उसके लिए हमें दो बातें बताई गई, और एक तो है हमें कैसे रहना है अंतर्मुखी कछुए की तरह, और दूसरा डिटैच नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो इसके लिए हमें फरिश्ता बनना है तो उसके लिए हमें स्वयं की स्थिति ऊंची बनानी पड़ेगी। तो मन की स्थिति हम कैसे श्रेष्ठ करें, कैसे श्रेष्ठ बनाएं, उसके लिए हमारे बीच में आ जाए हैं आदरणीय उषा दीदी जी। आदरणीय उषा दीदी जी, आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं, हाथ खड़ा करें, हाथ हिलाएं, हाँ सभी जानते हैं। तो आदरणीय उषा दीदी का थोड़ा सा मैं परिचय आपको दूंगी। आदरणीय उषा दीदी जी ने 1980 में अपना जीवन यज्ञ के प्रति समर्पित किया, और 1980 से लेकर 1992 तक आप हैदराबाद और मुंबई में सेवा केंद्रों पर सेवा देते रहे। आप सबको ये भी मालूम है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्सेज सभी कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में आपने अभी तक करवाए हैं, और इसके अलावा महाभारत और गीता रामायण इसके ऊपर आपने रिसर्च किया है, और इसके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश आपके हुए और बुक भी आपने इसके ऊपर लिखी है। तो आपने, मैं समझती हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप जो बुक है आपने पढ़ी भी होगी, बहुत अच्छी वो किताब है। तो हमने भी वो किताब पढ़ी और कई जगह हमने भी उसको पढ़ करके कई जगह कोर्सेज कंडक्ट करवाए। तो इसके अलावा मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि दीदी हमारे अमृतसर में दो बार पधारे हैं। एक बार तो हमारा जब विश्व शांति भवन का उद्घाटन हुआ था तो उसके बाद जो शिविर कराया वो दीदी जी ने ही हमारे अमृतसर में करवाया है। तो मैं ये बहुत जरूर बताना चाहूंगी कि दीदी जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत मीठा स्वभाव है, और सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं दीदी त्याग तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, और इनकी जितनी भी क्लासेस हैं और बहुत ही मन को मोह देने वाली और जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने वाली है। तो अभी हम इनके ही मुखारविंद से सुनेंगे कि हम अपनी मन की स्थिति को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। आदरणीय उषा देवी जी।
ओम शांति। बाबा के बेहद के घर में, बेहद के प्रांगण में, बेहद में स्थिति बनाने के लिए इतना सुंदर सोसर बाबा ने दिया है। बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि जब बाबा ने कहा था कि पांडव भवन एक दिन याद का किला बन जाएगा, जहां पवित्र ब्राह्मण आत्माएं आएंगी और योग की तपस्या करते हुए इसको ऐसा मजबूत किला बना देंगी। बाबा के अब तक के हर महावाक्य साकार होते चले जा रहे हैं, और इसलिए जब बाबा की हर बात पर निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो स्थिति को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण जीवन के अंदर एक है अष्ट शक्तियां, जो अष्ट शक्तियां भी बहुत आवश्यक है, परंतु आज हम देखेंगे अष्ट बल। आठ बल चाहिए स्थिति को मजबूत करने के लिए, और वो आठ बल कौन से हैं? तो सबसे पहला बल है निश्चय का बल या विश्वास का बल। जिस तरह दुनिया में भी विश्वास, फेथ बहुत बड़ी शक्ति है, यही कहा जाता फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो बड़े बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है। तो बाबा के घर में जब हम आए और बाबा का परिचय मिला हमें, और इस परिचय के आधार पर जब दिल से मेरा बाबा निकला, तो मेरा बाबा वही कह सकता है जिसको निश्चय हो गया, विश्वास हो गया। परंतु निश्चय में भी बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि स्वयं में भी निश्चय हो, बाप में भी निश्चय हो और ड्रामा में भी निश्चय हो। निश्चय बुद्धि वाला कभी भी हिल नहीं सकता है। माया कितनी भी परीक्षा लेने के पुरुषार्थ कर ले, प्रयत्न कर ले, लेकिन वो माया हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती है। वो तब जब निश्चय का बल हमारे पास है। तीनों निश्चय का बल अंदर आत्मा में इतनी शक्ति भर देता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए तो भी उखाड़ नहीं सकता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए तो भी हमें नहीं उखाड़ सकता है, है ना? रावण का बाप कौन है? शिव बाबा है कि नहीं? रावण भी किसकी पूजा करता था? शिव का भक्त था ना वो भी। तो रावण तो क्या, रावण का बाप भी हमें उखाड़ नहीं सकता। इतना निश्चय कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा के हम बच्चे इतने पावरफुल है, निश्चय हमारा ऐसा अडिग है कि कोई भी बात आए तो भी हम हिल सकते हैं। इतना पक्का निश्चय है कि हिल जाएंगे। बाबा ने कहा है कि अंत समय के पहले झाड़ हिलना जरूर है, ये भी भगवान ने बता दिया है कि झाड़ हिलने वाला है, और उसमें जो कच्चे होंगे वो क्या हो जाएगा? झड़ जाएंगे। और जिसने जिस जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो कैसे भी माया के तूफान आ जाए, कितना भी झाड़ हिलाने का प्रयत्न कर ले, लेकिन हम झड़ने वाले हैं क्या? नहीं। अभी जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो झाड़ तो हिलना ही है कि नहीं? तो उसके लिए तैयार है। एक बार दादी के साथ में हम बैठे थे, गुलजार दादी के साथ, हमने दादी से प्रश्न किया कि दादी बाबा कहते हैं समय हमारे लिए रुका हुआ है क्योंकि हम संपूर्ण नहीं बने हैं, इसीलिए अभी समय अपना जलवा नहीं दिखा रहा है, समय हमारे लिए रुका हुआ है। और दूसरी ओर जब दृष्टि करते हैं ब्राह्मणों की ओर, तो ऐसा लगता है कि बाबा के समय आप लोग जब थे, उस समय आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी, और आज जब हम ब्राह्मणों की ओर देखते हैं तो क्या लगता है, क्या दिखाई देता है? हाँ, अलबेलापन आ गया है। और क्या दिखाई देता है कि सतो प्रधान की ओर बढ़ने के बजाय कभी कभी ऐसा लगता है कि तमो प्रधानता आ गई, माना पीछे जा रहे हैं। आगे बढ़ने के बजाय, सतो प्रधानता के ओर आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं, और समय हमारे लिए रुका हुआ है, तो क्या विनाश होगा ही नहीं? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इतना परफेक्ट जवाब दिया। दादी ने कहा कि देखो, सारे कल्प को अगर देखा जाए तो सारे कल्प में हर धर्म को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। ये हर धर्म के चार अवस्था होती है। तो ब्राह्मण भी धर्म है, ब्राह्मण भी धर्म है, और इसीलिए जब ब्राह्मण धर्म है तो इसकी भी चार अवस्था जरूर आनी है। तो जैसे कहा कि बाबा के समय सतो प्रधानता थी, लेकिन धीरे 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 आज जो बाबा के पास भी आत्माएं आ रही है, कमजोर है, इतनी कोई मजबूत नहीं है, क्योंकि बहुत विकर्म का बोझा सिर के ऊपर है, कई जन्मों के संस्कार ऐसे कड़े हैं। तो इसीलिए वो जब आते हैं तो जरूर है वो संस्कार भी तो काम करते हैं ना। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तो कुछ नहीं देखा है, जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर जाएगा, ये ब्राह्मण धर्म में भी ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो कई लोग ये सोचेंगे यहां भी ऐसा होता है, इसे तो दुनिया अच्छी। अब ये संकल्प आना, इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे, निश्चय बुद्धि कहेंगे, यहां भी ऐसा हो रहा है, इसे तो दुनिया अच्छी। अब दुनिया तो अच्छी ही होंगी ना, क्योंकि वो 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, वो शुरू से थोड़ी आए हैं, वो तो बहुत पीछे से आए हैं, द्वापर में भी कई जन्म पीछे आए, तो उनके संस्कार इतने कड़े थोड़ी है। तो सबसे कड़े संस्कार तो किसके हैं? हमारे ही है ना। तो हमसे तो दुनिया अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि वहां इतना नहीं होगा, क्योंकि इतने कड़े संस्कार नहीं है। जो बाबा के बनते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो सबसे कड़े संस्कार तो यही मिलेंगे ना। लेकिन शाबाशी उन आत्माओं को है जो इतने कड़े संस्कार होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ करके एक विश्वास के साथ कि हम भी सोले कला संपूर्ण बन जाएंगे, तो शाबाशी नहीं है उन आत्माओं को जिसने अभी तक अपने में हिम्मत नहीं आ रही है, भले दुनिया देख करके भी कर, ये भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं, भगवान के बच्चे, लेकिन उसको अपने में विश्वास है कि एक न एक दिन मैं संपूर्ण बन जाऊंगा, है ना। उसने अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं है, दिल शिकस्त हुआ नहीं है, तो शाबाशी के पात्र नहीं कहेंगे। लेकिन जब अंतिम समय बाबा ने कहा झाड़ हिलेगा, क्योंकि भगवान को दो युग की बादशाही अगर देनी है तो कच्चे को थोड़ी देंगे, कच्चे को देंगे क्या? नहीं। जो विश्वास की कमी वाले हैं, जिसके पास विश्वास का बल नहीं है, निश्चय बुद्धि का बल नहीं है,
तो वो क्या कहेंगे, इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया में जाएंगे, जड़ गए ना, वो दुनिया में जाएंगे। क्योंकि भगवान को ऐसी आत्माओं को विश्व की बादशाही सौंपनी नहीं है, उसको तो पक्के बच्चे चाहिए। तो जिसका निश्चय का बल, विश्वास का बल इतना पावरफुल हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के पिछले सीजन की नहीं, उसके पहले के सीजन की मुरली याद आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सारे सीन्स देखने के बावजूद भी जो हिलता नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी बिंदी लगाने का जिसको आता है, अभ्यास है, वो पास हो जाता है ना। तो भगवान ऐसे को विश्व की बादशाही देंगे, इतना मजबूत चाहिए उनको, ऐसे रतन चाहिए, मजबूत रतन। तो हर सीन देखने के बाद भी जो हिलते नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ते नहीं है, और उसके अंदर क्या आएगा, जो देख करके चले जाएंगे दुनिया में वो तो चले गए, लेकिन जो यहाँ पक्के बच्चे हैं उनके अंदर सब कुछ देखने के बाद एक वैराग्य आएगा, जिसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। दादी ने बहुत सुंदर कहा, वो आत्माओं में ऐसा बेहद का वैराग आएगा देख देख करके, कि उनकी ऐसी लगन लगेगी कि बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, किसी को नहीं देखना है मुझे। और ऐसा बेहद का वैराग जब उनके अंदर आएगा, और उस समय जो उसकी लगन लगेगी बाबा के साथ, वो लगन समय को ले आएगा। उनकी ये लगन वाली स्थिति, लगन की अगन जो होगी, अभी योग कर रहे हैं लेकिन वो लगन नहीं है, लेकिन अंतिम समय जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी सब कुछ देखने के बावजूद, तब एक ऐसी लगन लगेगी बाबा के साथ, उस समय दुनिया से जैसे डिटैच्ड हो जाएंगे, ऐसी डिटैचमेंट, ऐसे नष्ट मोहा स्थिति हो जाएगी कि उस समय जो बस मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। और वो लगन वाली अगन की स्थिति जो है, वो स्थिति समय को ले आएगी। समय उनके लिए रुका हुआ है, समय सारे लोगों के लिए थोड़ी रुका हुआ है। तो इसीलिए अब हमें सावधान रहना है कि आने वाले समय में चाहे कैसी भी सीन आए ब्राह्मण परिवार में, दुनिया के लोग तो वाह वाह ही करने वाले हैं। अब तक लोग कुछ भी बोलते थे, कैसे भी शब्द कहते थे, लेकिन अब दुनिया की आत्माएं वाह वाह करेगी। लेकिन जो आपसी संस्कार है, अगर उन संस्कारों के ऊपर विजयी नहीं पाया तो क्या होगा, वो टक्कर तो खाएंगे, वही कई प्रकार के पेपर लेने के निमित्त बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब धूर को पकड़ लिया हमने, बाबा को पकड़ लिया, बस कुछ नहीं, वो समय को समीप ले आएगा और उसी के आधार पर नंबर बन जाएंगे। अब वो समय आने वाला है। तो निश्चय का बल बहुत पावरफुल चाहिए। दूसरा बल है पवित्रता का बल या सत्यता का बल। और जिसके पास ये पवित्रता का बल होगा, उसके सामने कोई भी परीक्षा आएगी तो क्या होंगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी पवित्रता की अग्नि ऐसी है, तेज है वो तेज के सामने कुछ भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का बल चाहिए। जिसके अंदर पवित्रता का बल, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर होगा, वो हर परिस्थिति में भी अनअफेक्टेड रहेगा, कोई भी चीज उसकी स्थिति को छूने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी, है ना। और ऐसी सत्यता की शक्ति उसके अंदर होगी तो सत्यता का बल, पवित्रता का बल। और ये सत्यता के बल के अंदर और क्या चीज है, सत्य जहां है वहां वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदार, आज्ञाकारी बनना, ये अंदर में ऐसी मजबूत पकड़ होगी जिस कारण कोई भी दुनिया की ताकत उसको हिला नहीं सकती है। तो दूसरा बल है पवित्रता का और सत्यता का बल। फिर तीसरा बल है, बाबा ने आकर हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान दे दिया, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ जो बल दिया वो है श्रीमत का बल। श्रीमत का बल है। ज्ञान तो दुनिया में भी बहुत है, लेकिन क्योंकि वहां श्रीमत नहीं है इसलिए उनके पास बल नहीं है। बहुत ज्ञान है, ऐसा साधु संन्यासी महात्माओं के पास भी ज्ञान की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, है ना, लेकिन उनके पास श्रीमत का बल नहीं है। हम बच्चों के पास ज्ञान के साथ साथ श्रीमत का बल है, जहां भगवान ने हर कदम पर हमें श्रीमत दी हुई है। तो श्रीमत का बल है हमारे पास, या यूं कहे तो श्रीमत का हाथ हमने पकड़ा हुआ है। बाबा कई बार कहते हैं हाथ में हाथ, है ना, भगवान के हाथ में हाथ दे दो। तो बाबा का हाथ कौन सा है, श्रीमत, ये हाथ है ना बाबा का। ये हाथ जो पकड़ के चलता है उसको कभी कुछ नहीं हो सकता है, है ना। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेकर के मेला देखने गया और अचानक इतना जोर का तूफान आने लगा और अफरा तफरी मचने लगी, तो पिता ने अपनी बच्ची को कहा मेरा हाथ पकड़ ले, कहीं मेले में गुम ना हो जाए, हाथ पकड़ ले। तो बच्ची ने कहा कि नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तेरा हाथ पकड़ूं। कहा नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो छूटने की संभावना रहेगी, क्योंकि मेरे हाथ कोमल है, इतना पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। क्या छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हम भगवान का हाथ पकड़े उसके बदले अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो तो कुछ भी हो जाएगा, भगवान छोड़ेगा, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा के हाथ में हाथ देने से कभी नहीं छोड़ेंगे। तो श्रीमत को इतना एक्यूरेटली, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत मिली है, श्रीमत को इतना एक्यूरेटली हम फॉलो करें, माना बाबा के हाथ में हाथ दे देना है ना। तो बाबा के हाथ में जिसका हाथ है वो कभी भी क्या होगा, कमजोर नहीं हो सकता है। इतना श्रीमत में बल है, पावर है, जो कभी हमें कमजोर नहीं होने देगा अंदर से, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हाथ किसने पकड़ा है ना, सर्वशक्तिमान भगवान ने पकड़ा है। तो कभी कमजोर हो सकता है, कभी कमजोर नहीं होने देगा। और एक अंदर से विश्वास होगा कि मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, बाबा मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है। मेरे से अगर कुछ गलती हो भी जाएगी तो भी ये नहीं कहे गलती किया छोड़ दो बाबा, बाबा ये नहीं कहेगा छोड़ दो इसका हाथ, है ना। हम छोड़ सकते लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा ने जब पकड़ा है तो पूरी तरह से पकड़ा है। और ये कई बार हमें महसूस आती है कि अगर कोई ऐसी परीक्षा आती है और हमारे मन के अंदर थोड़ी भी हलचल भी मचती है तो भी ऐसा लगता है कि बाबा छोड़ने वाला नहीं है। दूसरे दिन की मुरली में ऐसी कोई बात बता देगा जो हमें और अंदर से ताकत मिल जाती है। बस तो ये है श्रीमत का बल, है ना? श्रीमत कहां ले आनी है? तो चौथा बल है श्रेष्ठ कर्मों का बल। जितना ज्ञान का एप्लीकेशन हम अपने कर्म में करने लगते हैं, श्रीमत के हाथ में हाथ दे हर कदम उस अनुसार चलने लगते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म का बल बहुत ताकत देता है अंदर, है ना? मनुष्य के पास आज श्रेष्ठ कर्म का बल नहीं है, क्योंकि उनको श्रीमत ही नहीं मिलती है। तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति कहां से आएगी? हम भगवान के बच्चे, हमें श्रीमत मिलती है, और श्रीमत के आधार पर जो कर्म करते हैं तो बल भी कितना श्रेष्ठ कर्म का बल होगा, है ना? कुछ सालों पहले की बात है, एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। तो बहन ने मुझे देखा और मुझे पूछने लगी, बहन जी आप टीवी पर आते हो ना? तो मैंने कहा, तो फिर मेरे से बातचीत करने लगे। फिर उसने अपना परिचय दिया कि बहन जी मैं ना ज्योतिष हूँ। इनका बहुत अच्छी बात है ना। फिर कहने लगी मैं आपका हाथ देख सकती हूँ। इनका देख लो, है हमारे हाथ में क्या होता है, भगवान की खींची हुई लकीरें हैं। तो कहा मैं आपका हाथ देख सकती हूँ। मन का देख लो। देखने के बाद जो है मेरे को कहती है, बहन जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको बताऊं तो? मन का बुरा क्यों मानेंगे हम, है? कहा ऐसा है कि आपका हाथ देख करके लगता है, बता रहा है आपका हाथ कि आपके जीवन में अभी काल सर्प योग आने वाला है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उसने मुझे समझाने का प्रयत्न किया कि जैसे कोई सर्प होता है ना, तो सर्प जब डसता है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, ऐसे आपके जीवन में जो है अभी काल सर्प योग आने वाला है और 6 महीने के अंदर आपके अंदर ये काल सर्प योग आएगा। मैंने कहा क्या होगा फिर? खत्म हो जाएंगे? कोई बात नहीं। नहीं, बोले आप खत्म नहीं होंगे। ये काल सर्प योग जो होता है तो वो आपको डसेगा और ऐसी परिस्थिति आएगी आपके जीवन में जो आप ये संस्था छोड़ देंगे, है ना? और आप संस्था छोड़ करके दुनिया में चली जाएंगे। और जब ऐसे उसने कहा तो मुझे हंसी आ गई, जैसे आपको हंसी आई मुझे भी हंसी आ गई उस वक्त। तो मुझे जब हंसी आई तो उसने मेरे को कहा, बहन जी अब तक मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं पड़ी। मैं कहा, हो सकता है कि आपकी भविष्यवाणी हमेशा सच्ची पड़ी हो, है ना? अब इतना एक्यूरेटली आप बताते भी होंगे। मैंने कहा हो सकता है कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी भी जो काल सर्प योग आप कहते होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन संस्था छोड़ करके जाना ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कहा नहीं, ऐसी परिस्थिति आएंगी जो आप मजबूर हो जाएंगे संस्था छोड़ने के लिए। मैंने कहा चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन ये बात आपकी गलत होगी कि संस्था छोड़ देंगी मैं। तो कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे पास जो है ना, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है कि मैंने आज दिन तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिस कारण से मैं संस्था छोड़ दूं, है ना? और इसीलिए मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है कि मेरे कर्म मुझे बचाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं, ये दुआएं मुझे बचाएगी, ये मुझे विश्वास है। तो कहा ठीक है। उसने अपना कार्ड निकाल करके दिया, कहने लगी आप है ना 6 महीने के बाद मेरे को फोन करना, अगर आप संस्था से निकल गई तो मेरे को फोन करके बताना कि मेरी भविष्य, मुझे भी पता चले मेरी भविष्यवाणी सच्ची थी या झूठी थी, है ना, गलत निकली। मैंने कहा फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टीवी पर देखना बंद कर देंगे तो समझ जाएंगे। अगर टीवी पर आती रही मैं तो इससे तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं संस्था में अभी तक जिंदा हूं। मैंने कहा ये बात उसने मुझे कही थी, लगभग 95 की बात है, 95 की बात है, और आज हाँ इतने साल हो गए। कहने का भावार्थ जो बाबा कहते हैं ना, हमें श्रेष्ठ कर्म क्यों करना है, श्रेष्ठ कर्म हमें वो ताकत देता है अंदर से कि कैसे। और उसके बाद बात उसके बराबर थी, इतनी बड़ी परीक्षा मेरे सामने आई, बहुत बड़ी परीक्षा, कि अगर सचमुच मेरे पास ये बल नहीं होता था तो शायद मैं दुनिया में जाती थी या चली जाती थी। बहुत बड़ी परीक्षा आई, जैसे पैरों तरह की जमीन निकल गई हो इस तरह की परीक्षा आई मेरे सामने। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर 22 साल हो गए उस बात को, तो ये मेरे श्रेष्ठ कर्म का बल कहो या दुआओं का बल कहो सभी का, या श्रीमत का बल को, हाथ पकड़ा हुआ है ना, बाबा ने हाथ पकड़ा है ना, तो भगवान के हाथ में हाथ देने का ये नतीजा है कि वो हमें नहीं छोड़ सकता है। हम छोड़ने के लिए संकल्प भी आ जाए लेकिन वो हमें नहीं छोड़ सकता है। तो ये तीनों बल, श्रीमत का बल, श्रेष्ठ कर्म का बल और दुआओं का बल, ये तीन बल जो है हमें हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में सेफ रखेगा ही रखेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करते चलो। हाँ आप छोड़ दो ऐसा मना, आप ये ज्योतिषी करना छोड़ दो नहीं, उसकी आधी बात तो सच निकली ना भाई, वो तो इतना ही बता सकते हैं, वो ये जन्म का तो नहीं बता सकते है ना, इसीलिए वो तो ग्रहों के हिसाब से जो उसने बताया बताया। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी जगह अगर दूसरा कोई जरूर होता था तो चला जाता था, ये भी पक्का था। लेकिन क्योंकि बाबा के हाथ में हाथ था और श्रेष्ठ कर्म का बल था, दुआओं का बल था, इसलिए बचे। वो उनको पता नहीं था, इस जन्म का उसको पता नहीं था ना कि मेरे पास कितना खाता है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, उसको थोड़ी पता था। तो इसीलिए वो उसके हिसाब से सही थी, लेकिन हम भी उसको चैलेंज कर दिया था उस बात को लेकर के कि मुझे अपने कर्मों पर बहुत विश्वास है ना, तो विश्वास का भी बल हो गया। ये 8 बल क्यों चाहिए हमें। अच्छा, उसके बाद मैंने जो 5वां बल, 4 बल बताए ना, पहले है निश्चय का बल, दूसरा है पवित्रता का बल, तीसरा है श्रीमत का बल, चौथा है श्रेष्ठ कर्म का बल, 5वां बल फिर योग तपस्या का बल, योग बल कहो या तपस्या का बल। उसके बाद जब उसकी बात सुनी, उसके बाद मैंने 8 घंटे का अपना चार्ट बनाया योग का, कि भाई अगर थोड़ी बहुत कमी हो भी जाए तो तपस्या का बल जरूरी है ना, योग बल। बाबा हमेशा कहते योग बल जिसके पास होगा वो सेफ रहेगा। तो 8 घंटे का याद का चार्ट बनाया मैंने, लेकिन ये भी देखा माया ऐसी मजबूत है जो क्या करेगी, योग में विघ्न जरूर डालेगी, है ना, तो 8 घंटे का चार्ट मैंने कैसे बनाया कि दिन भर में तो आना जाना लोगों का ये रहता है, तो उस समय मैंने सोचा कि रात की, बाबा कहते हैं ना नाइट भट्टी करो, तो 8 घंटा रात में भट्टी करूं, तो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं योग करूं। तो उसके लिए फिर मोहिनी दीदी थी, तो मोहिनी दीदी से मैंने बात किया कि मैं है ना योग करना चाहती हूँ, नाइट भट्टी करना चाहती हूँ, फुल नाइट भट्टी। बाबा भी कहते रात को जाग करके क्वारंटाइन में बैठ करके फिर आप तो मैं ये अनुभव करना चाहती हूँ, तो मैं बाबा के कमरे में कर सकती हूँ यहाँ पांडव भवन का। बहन जी ने कहा कि नहीं बाबा के कमरे में नहीं करो, तुम हिस्ट्री हॉल के दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं रात में, तो वहां बैठ के तुम करो। मैंने कहा ठीक है। तो बाबा के ये धाम में कितनी पावर है, और जहां साकार बाबा ने भी योग किया हो तो ताकत तो बहुत होगी उसमें भी। तो मैं नाइट भट्टी चालू किया, तो किसी को बताया नहीं था, खाली मोहिनी दीदी से श्रीमत लिया और मैंने भट्टी करना शुरू किया। तो 10 बजे के बाद मैं एक पानी की बोतल लेकर के बैठती थी, ताकि अगर बीच में कहीं झुटका आने की भी संभावना हो तो कम से कम मैं फिर से अलर्ट हो जाऊं वापस। तो पानी की एक बोतल लेकर के बैठने लगी, योग करने लगी, बहुत एकाग्रता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ पूरी रात की भट्टी करती थी, है ना। लेकिन 2 दिन किया बहुत अच्छे से, तीसरे दिन जो है किसी ने हमारी शिकायत लगा दी, दादी को, बड़ी दादी को। कमरे वाले ने देखा कि भाई रात को आती नहीं है, तो रात को कहां जाती है। तो कमरे वाले को तो हमने बताया नहीं था कि भाई मैं नाइट भट्टी कर रही हूं, तो कमरे वालों ने दादी को कहा दादी ये रात भर आती नहीं है 2 दिन से, और ऐसा लगता है ये योग कर रही है, लेकिन दादी अगर ये ऐसे ये रात भर योग करेगी और दिन में भी सेवा करेगी तो उसका मेंटल इम्बैलेंस ना हो जाए। तो दादी को तो ख्याल चलेगा ना, तो बड़ी दादी ने मेरे को बुलाया इधर आओ, हाँ रात को कहाँ जाती है तुम। तो फिर मैंने दादी को सुनाया कि दादी मैं है ना योग कर रही हूँ और मुझे अनुभव करना है कि जो बाबा ने आप लोगों को रात रात जाग करके, रात को जाग करके भी योग करो, तो मैं वो अनुभव करना चाहती हूँ और इसलिए मैं रात को योग कर रही हूँ। हिस्ट्री हॉल में मैंने बहन जी से छुट्टी लिया है और मैं हिस्ट्री हॉल में बैठ करके योग कर रही हूँ ताकि 8 घंटे मैं योग कर सकूँ। दादी ने कहा ये ठिकाने रखना है ना, क्योंकि दादी को जैसे पढ़ाया गया था कि भाई ये इम्बैलेंस हो जाएगा दिमाग इसका, रात भर इस तरह से जाग कर करेंगी दिन में भी। मैंने कहा नहीं दादी मैं दिन में सो लेती हूँ, इतना घंटा सो लेती हूँ, 6 घंटा मैं आराम कर लेती हूँ। दादी ने कहा नहीं ऐसे करो, तुम है ना 2:30 बजे के बाद उठो, 2:30 बजे के बाद 5 बजे तक योग करो, रात में नहीं करो। मतलब बड़ी दादी ने श्रीमत दे दी तो फिर उसके अगेंस्ट कौन जा सकता था। तो 2 दिन मेरा हुआ, 7 दिन मुझे करने का मन था कि 7 दिन का प्रयोग करूं मैं, लेकिन माया शायद नहीं चाहती थी कि भाई ये 7 दिन करेगी तो पता नहीं उसमें तो ऐसी ताकत आ जाएगी जो मुश्किल हो जाएगा फिर इसको। तो 2 दिन करने के बाद ही मेरा समाप्त हो गया। खैर दिन में फिर मैंने उसको कवर अप कर लिया कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और दिन में मैं कर लेती थी, और दिन में मैं है मतलब टोटल 8 घंटे का चार्ट जरूर बनाया, और 8 घंटे का चार्ट जो बनाया उसके आधार पर मेरे अंदर ऐसी ताकत आ गई, बहुत ताकत आ गई कि कैसे भी तूफान आए वो मुझे हिला नहीं सकता है। मतलब मुझे फील ही ना हो ये तूफान है, ये फील ना हो, कितने तूफान आए लेकिन वो तूफान तूफान ही नहीं लगा, ये महसूस था। इतने मजबूत हो जाते हैं हम, तो ये योग तपस्या का बल उस समय काम आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग तपस्या अपनी बढ़ाओ, जितना योग का बल होगा तपस्या का बल होगा उतना, और जितना एकाग्रता के आधार से वो तपस्या की हुई है वो बहुत पावर देता है। एकाग्रता का बल भी कोई कम थोड़ी है, ये सब योग का बल है। तीनों, एकाग्रता का बल कहो, तपस्या का बल कहो, या योग का बल को, ये तीनों जो है एक के अंडर में आ जाता है योग बल। फिर छठा है ना, पांच देख लिए, छठा है त्याग का बल। बाबा की अभी मुरलियां चल रही है त्याग के ऊपर, हर संडे की मुरली एक त्याग के ऊपर, सेवन डेज बाबा सेवन मुरली चलाई थी बाबा ने उस समय में 82 में, सात मुरलियां बाबा की त्याग के ऊपर चली थी। तो छठा बल है त्याग का बल, और उसमें भी जो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान का त्याग, देहभान का त्याग जिसने किया है उसमें बहुत पावर आती है। बाकी देह के संबंधों का माना, जो देह की कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, उसकी अधीनता न होना, देह के संबंधों के अधीनता न होना, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, जैसे आज की बाबा की सुबह की वाणी के अंदर भी हमने देखा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पावरफुल बल है। त्याग का बल कोई कम थोड़ी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान का जिसने, क्योंकि हमें अंदर से कमजोर करने वाला देह अभिमान ही है। अहंकार ने मनुष्य को इतना कमजोर कर दिया है, अभिमान ने इतना कमजोर कर दिया है, और अभी देह भान भी इतना कमजोर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसका त्याग करो, क्योंकि इसका त्याग करने से त्याग का जो बल है वो बहुत पावर देता है ना। इसलिए हमेशा त्याग पहले, पीछे तपस्या, पीछे सेवा। तो त्याग का बल भी कोई कम नहीं है। अच्छा, फिर सातवां बल है धारणा का बल। बाबा ने जो हम बच्चों को नियम मर्यादाएं धारणाएं दी है, ये धारणाएं भी बहुत सोच समझ करके बाबा ने दी है। एक एक धारणा जो हमारी है वो हमें अंदर से इतनी शक्तिशाली बना देती है। आज दुनिया में देखो, लोग खाली एक उपवास करते हैं, एक धारणा लेते हैं उपवास है ना, उपवास करते तो भी उनका अंदर का विल पावर बढ़ता है, इतना पावर आता है उससे, एक उपवास का पावर आ जाता है। तो बाबा ने तो हमें कितने प्रकार के उपवास बताए हैं, विचारों के भी उपवास, के नेगेटिव विचारों का भी सेवन न हो ऐसा भी उपवास करना है। तो धारणाओं का बल बहुत पावरफुल बल है। ये धारणाओं का बल हमें अंदर से सशक्त कर देता है, इतना पावर दे देता है। इसीलिए बाबा ने हर धारणा सोच समझ करके दी हुई है। कई बार दुनिया के लोग हमें कहते भी है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, अगर ये धारणा को माइनस कर देना तो सब लोग आ जाएंगे आपके पास में, कहते हैं ना ऐसा है? हाँ, कहेंगे बहुत अच्छा है, बस धारणा को माइनस कर दो कि भाई ये माइनस कर दो, और ये माइनस अगर हो गया फिर तो सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें सारे लोग चाहिए ही नहीं ना, हमें तो पक्की चाहिए ना। जो धारणाओं में पावरफुल है, ये धारणाओं का बल कोई कम है क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं धारणाओं का बल नंबर उसी के आधार पर तो बनना है, क्योंकि उसी से हमारी सतो प्रधानता की स्टेज जो है, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधानता की स्टेज, ये धारणाओं की शक्ति के आधार से तो बननी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये धारणाओं का बल बहुत पावरफुल बल है, इतना मजबूत हमें कर देता है अंदर से है ना, कि कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि बाबा को याद करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है कि जितनी परसेंटेज में अभी हमारी धारणा है, जितनी भी परसेंटेज में है, लेकिन जैसे बूंद बूंद उसकी शक्ति अंदर इकट्ठी होती जाती है। योग भी करते हैं, भले हमारा अभी निरंतर योग नहीं है, बीच बीच में टूटता रहता है, इधर उधर बुद्धि भटक जाती है, लेकिन जितना देर भी हम योग करते हैं तो जैसे बूंद बूंद अंदर में बाबा की शक्ति अंदर में भरती जाती है, ये अभी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब कोई परीक्षा आती है, बहुत बड़ा पेपर आता है, तो उस समय वो बल जो है, योग का बल कहो या धारणाओं का बल, इतना अंदर से इकट्ठा होकर के बाहर निकलता है, जो कई बार हम कहते भी है कि मेरे में तो इतनी शक्ति थी नहीं, लेकिन ऐसा लगा बाबा की शक्ति ने मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में पास करवाया, कहते हैं ना, हैं? हाँ, होता भी ऐसा है। और बाबा की शक्ति तो उस समय कोई बाबा कोई मैजिक वैन थोड़ी घुमाता है, कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमा, ये ले शक्ति ले लो, नहीं। लेकिन इतना समय से जो हम योग करते जा रहे हैं, ये योग, ये धारणाओं का बल जो है, धीरे धीरे बूंद 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 अंदर जो जमा होता है, वो उस समय एक ऐसा फोर्स बन करके निकलता है बाबा की शक्ति। इसीलिए बाबा कहते हैं, नहीं लगता है तो भी बैठो, संगठन में बैठने से दूसरों का भी वाइब्रेशन तो मिलेगा, तो कम से कम वो बल तो अंदर जमा होता जाएगा। तो इसीलिए ये धारणाओं का बल, ये योग का बल जो बूंद बूंद भी जमा होता जा रहा है, वो बूंद बूंद तो अंतिम समय यही बाहर निकलेगा। और आठवां बल सेवा द्वारा दुआओं का बल, ये भी बहुत बड़ा बल है। दुआओं का बल हमें क्यों चाहिए? दादी जानकी हमेशा कहती है, ये सीजन है दुआ देने की, दुआ लेने की, यही सीजन है। इसी सीजन में हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। जितनी दुआएं देते जाओ, शुभ भावना शुभ कामना रखते जाओ, अनेकों की दुआएं भी हमारे साथ जमा होती जाती है। ये दुआओं का बल हमें कहाँ काम आना है? अंतिम समय काम आना है, अंतिम समय, क्योंकि दुआओं के बल से ही बड़ी से बड़ी बात भी आएंगी तो भी जैसे पानी पर लकीर या मक्खन से बाल निकल जाता है। जैसे कई बार हम महसूस करते सुनते हैं, समाचार भी सुनते हैं कि कई लोग बाहर जा रहे थे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन उन लोगों को एक खरोच तक नहीं आई, खरोच तक नहीं आई। तो खरोच तक क्यों नहीं आई? क्योंकि दुआओं का बल बहुत है। इसलिए कोई बस में जा रहे हैं, बस में कुछ लोग शरीर भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, और कुछ लोगों को खरोच तक नहीं आती है, खरोच तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो दुआओं का बल जो इतना था कि उस दुआओं के बल ने उस समय जैसे कवच बन करके सामने आ गए और उनको एक खरोच तक नहीं आने दी। जहाँ कि उतना बड़ा एक्सीडेंट, लोग कई लोग मर गए, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए, और एक दो ऐसे होंगे जिनको एक खरोच तक नहीं आती है। यही तो दुआओं का बल है। तो उस समय दुआओं का बल हमारे सामने एक कवच बन करके आ जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए आज के युग में ये दुआओं का बल बहुत चाहिए, कि बाबा के अंत तक सेवा भी करते जाना है, सेवा को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जितना सेवा करते जाएंगे, किसी को सुख मिलता है हमारी सेवा से, किसी को शांति मिलती है, जो अंजलि उनको चाहिए वो मिल जाती है, तो उससे जो उनकी दुआएं मिलती है, वो दुआएं हमको हर प्रकार की परिस्थिति में सेफ रखेगी। तो ये आठ बल, जिस तरह आठ शक्तियां बहुत जरूरी है, अष्ट शक्ति बहुत जरूरी है अष्ट रतन में आने के लिए, ऐसे ये आठ बल भी हमें अष्ट रतन के अधिकारी बना देती है। तो ये बल हमारे अंदर जरूरी है। संगम युग में हर प्रकार की बात जो सामने आती है, उसको क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उन विघ्नों को भस्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ये सारे बल उस समय काम करने लगते हैं। आज हमें महसूस नहीं होते हैं, लेकिन ये बल हमें सचमुच उस वक्त रियलाइजेशन होगा कि सचमुच ये बल ने मुझे हर बात में किस तरह से प्रोटेक्ट किया, बचाया, पार करवाया, शक्ति प्रदान की, और कैसे बड़े से बड़ी बात को भी, तूफान को भी हम तोहफे के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, आगे बढ़ने का साधन बना दिया। सचमुच मैंने यही महसूस किया, इतना बड़ा जो तूफान आया उसके बाद वही मेरा आगे बढ़ने का आधार बन गया, वो ऐसा तोहफा बन गया मेरे लिए, और वो तोहफे ने मुझे इतना जीवन के अंदर आगे बढ़ाया, हर रीति से इतना पावरफुल, अंदर से सशक्त किया, शक्ति भरा, और आगे बढ़ाने का आधार भी यही तूफान था, है ना। तो इसीलिए बातें तो आएगी, अंतिम समय और भी बातें आएंगी, बड़े से बड़े पहाड़ गिरने वाले, जो बाबा ने कहा है कि बड़े बड़े पहाड़ अभी तो गिरने बाकी है, तो वो आने वाला है समय, लेकिन उस समय के पहले कम से कम ये आठों बल को ऐसा जमा कर लो अंदर, ऐसा जमा हो जाए जो उसको पार करना कोई बड़ी बात महसूस ही ना हो, ठीक है। तो ये आठ बल अपना चेक कर लेना, और ये तीन दिन भट्टी जो है, उन तीन दिन के अंदर भी जितना हो सके अपने अंदर ये आठों बल को क्या करना है, पावर उसको जरा भी अगर हिलता डोलता हो तो मजबूत कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।
अब हमें